एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
एकत्र ज्ञान गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं आकर्षक विषय पर बात करने वाले हैं, चीनी साहित्य।
नमस्कार।
ये दुनिया की सबसे पुरानी और लगातार चली आ रही साहित्यिक परंपराओं में से एक है। सोचिए, लगभग 3000 साल पुरानी।
हाँ बिल्कुल, 3000 साल। और आज की हमारी चर्चा का आधार है सबीना नाइट की किताब चीनी साहित्य, एक संक्षिप्त परिचय से जुड़े कुछ स्रोत।
जी,
आज के जमाने में जब चीन इतना अहम हो गया है दुनिया में, तो उसके साहित्य को समझना मतलब ये सिर्फ पुरानी किताबें पढ़ना नहीं है।
हाँ, सही कहा।
ये असल में उसकी संस्कृति, उसके समाज और वहाँ के लोगों की सोच को, उनकी आकांक्षाओं को समझने का एक बहुत ज़रूरी जरिया है।
बिल्कुल, क्योंकि साहित्य वो किसी भी समाज का आईना होता है ना, है ना? उसकी आत्मा की आवाज।
सही कहा, आत्मा की आवाज।
मतलब उसका लक्ष्य क्या था? क्या वो सिर्फ कला थी, या समाज को बदलने का कोई औजार, या फिर कभी कभी सत्ता का गुणगान? ये सफर दिलचस्प होने वाला है।
हाँ जरूर, तो चलिए शुरुआत करते हैं लेखिका से, सबीना नाइट। वो स्मिथ कॉलेज में प्रोफेसर हैं, चीनी और तुलनात्मक साहित्य पढ़ाती हैं।
अच्छा, तुलनात्मक साहित्य भी?
जी हाँ, इसका मतलब है कि उन्हें न सिर्फ चीनी साहित्य की गहरी समझ है, बल्कि वो उसे दुनिया के दूसरे साहित्यों के साथ रखकर भी देख सकती हैं। ये नज़रिया बहुत अहमियत रखता है।
हाँ, और उनकी एक खासियत शायद ये भी है, जैसा पता चलता है, कि वो बड़े बड़े एकेडमिक विचारों को ना बहुत आसान और दिलचस्प अंदाज में पेश कर पाती हैं।
बिल्कुल।
वो सिर्फ तथ्य नहीं बताती, वो समझाती हैं कि साहित्य समाज में कैसे काम करता है, मतलब उसकी रगों में कैसे दौड़ता है।
हाँ
और उनकी रिसर्च का फोकस भी जैसे नैतिकता, व्यंग्य और खासकर व्यक्ति और राज्य के रिश्ते पर रहा है।
और ये सारे मुद्दे तो चीनी साहित्य के बिल्कुल केंद्र में रहे हैं हमेशा से,
सही बात।
और इसीलिए मुझे लगता है वो इस संक्षिप्त परिचय को लिखने के लिए एकदम सही व्यक्ति हैं। वो चीनी साहित्य को सिर्फ एक अजूबे की तरह नहीं देखती, बल्कि उसे विश्व साहित्य के बड़े मंच पर रखती हैं। वो दिखाती हैं कि कैसे ये साहित्य अपनी भूमिका और अपने लक्ष्य को लेकर हमेशा से जूझता रहा है, बदलता रहा है।
अच्छा, तो अब आते हैं किताब पर। ये किताब असल में करती क्या है, मतलब इसका दायरा क्या है?
देखिए, ये किताब कोशिश करती है कि 3000 साल के इतने लंबे इतिहास को, जिसमें कितने राजवंश आए, कितने लेखक, कितने विचार, उन सबको एक कहानी की तरह पिरोया जाए।
वाह, 3000 साल!
हाँ, तो ये सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं है, ये समझने की कोशिश है कि चीन में साहित्य का मतलब क्या रहा है समय के साथ, उसका मकसद क्या समझा गया। और किताब का जो मुख्य तर्क है वो बहुत दिलचस्प है। नाइट कहती है कि चीनी साहित्य कोई म्यूजियम में रखी हुई स्थिर चीज नहीं है,
अच्छा,
न ही ये सिर्फ सरकारी फरमानों का पुलिंदा है, बल्कि ये एक जिंदा धड़कती हुई परंपरा है जो लगातार, आप कह सकते हैं, तनावों से जूझती रही है।
तनाव? कैसे तनाव?
जैसे व्यक्ति और समाज के बीच का तनाव, कला और राजनीति के बीच का, अपनी जड़ों और बाहरी दुनिया के असर के बीच का, ये सारे तनाव इसमें दिखते हैं।
तो मतलब साहित्य वहां सिर्फ मनोरंजन या खूबसूरती की चीज नहीं था, उसकी भूमिका कुछ और थी।
बिल्कुल नहीं। नाइट के अनुसार चीनी साहित्य हमेशा से ही नैतिक, दार्शनिक और राजनीतिक बहसों का एक तरह से मुख्य अखाड़ा रहा है।
अखाड़ा?
हाँ, मतलब जहाँ बड़े सवाल उठाए गए, उसकी भूमिका हमेशा सवालों के घेरे में रही है। जैसे, क्या लेखक को समाज का नैतिक प्रहरी होना चाहिए? क्या उसे शासक को सलाह देनी चाहिए, या फिर उसे सिर्फ अपनी कला पर ध्यान देना चाहिए? यही वो सवाल है जो इस किताब के केंद्र में है। ये किताब हमें चीन को सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था या राजनीति से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा से, उसके साहित्य के जरिए समझने में मदद करती है।
तो ये किताब हमें कहाँ कहाँ ले जाती है, मतलब किन पड़ावों से गुजरती है?
सफर तो लंबा है। शुरुआत होती है बिल्कुल शुरू से, कन्फ्यूशियस, दाओ, बौद्ध विचारों की नींव से, फिर चीनी लिपि की अनोखी बनावट जो खुद एक कला है।
हाँ, वो चित्रलिपि वाली बात।
जी, फिर आता है तांग और सोंग राजवंशों का जमाना, जब कविता अपने शिखर पर थी। फिर लोक कथाओं पर आधारित बड़े बड़े उपन्यास लिखे गए, फिर आधुनिक युग की उथल पुथल जब साहित्य राष्ट्र को बचाने का जैसे हथियार बन गया, फिर माओ का दौर आया जब साहित्य पर बहुत कड़ी बंदिशें लगीं, और आखिर में आज का दौर जब चीनी साहित्य दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। हर दौर में साहित्य की भूमिका, उसका लक्ष्य, वो बदलता रहा।
चलिए तो इस सफर के कुछ अहम पड़ावों पर जरा और गहराई से बात करते हैं। पहला पड़ाव आपने बताया नींव, भाषा, दर्शन और शुरुआती ग्रंथ।
जी, यहाँ नाइट्स चीनी लिपि की खासियत बताती हैं, ये अक्षरों पर नहीं बल्कि चित्रों या आइडियाज पर आधारित है।
हाँ, पिक्टोग्राफ, आइडियोग्राफ।
बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि शब्द सिर्फ मतलब नहीं बताते, वो दिखते भी हैं। एक विजुअल अपील है।
अच्छा।
हाँ, तो कविता को लिखना भी एक कला बन जाता है, सुलेख यानी कैलीग्राफी। और शुरुआत से ही साहित्य, जिसे चीनी में वेन कहा गया, उसका रिश्ता सिर्फ कला से नहीं बल्कि दर्शन और शासन से भी जुड़ गया।
शासन से? कैसे?
जैसे कन्फ्यूशियस के जो माने हुए 5 क्लासिक्स हैं, उनमें शिजिन यानी गीतों की पुस्तक भी शामिल है। अब इसे सिर्फ कविता नहीं माना गया, इसे नैतिक शिक्षा और अच्छे शासन की सीख देने वाला ग्रंथ भी माना गया।
तो क्या शुरुआत में साहित्य का लक्ष्य सिर्फ यही था, नैतिकता और शासन का पाठ पढ़ाना?
हाँ, काफी हद तक तो यही था। शुरुआती सोच ये थी कि साहित्य की भूमिका है ब्रह्मांड के नैतिक नियम, जिसे दाओ कहते हैं, उसे व्यक्त करना।
दाओ यानी द वे।
हाँ, द वे और द पाथ। तो लेखक सिर्फ कलाकार नहीं, एक नैतिक गाइड भी था। वैन यानी साहित्यिक सुंदरता का लक्ष्य, दाओ यानी नैतिक मार्ग दिखाना था। ये दोनों जुड़े हुए थे।
लेकिन क्या कोई और नजरिया भी था उस वक्त? मतलब सब यही मानते थे?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वहीं पर दाओवादी ग्रंथ भी थे, जैसे दाओ देजिंग और ज्वांगजी। वो एक बिल्कुल अलग राह दिखाते थे।
अच्छा, क्या कहते थे वो?
वो प्रकृति की बात करते थे, सहजता की, सामाजिक बंधनों से आजादी की। ये कन्फ्यूशियस की कर्तव्य वाली सोच से बिल्कुल अलग था। इसने लेखकों को एक और रास्ता दिखाया, अपने अंदर की आवाज सुनने का, समाज से थोड़ा कटकर जीने का। तो यहीं से साहित्य की भूमिका पर वो बहस, वो तनाव शुरू हो जाता है।
अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव पर, स्वर्ण युग, कविता, विद्वान अधिकारी और संतुलन की खोज। ये तांग और सोंग राजवंशों का दौर है ना, लगभग 7वीं से 13वीं सदी।
जी हाँ, इसे चीनी कविता का सुनहरा दौर कहते हैं।
और यहाँ वो विद्वान अधिकारी वाली बात आती है।
हाँ, ये बहुत ही अनोखी चीज है, स्कॉलर ऑफिशियल। सोचिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए, ऊंचे पद पर पहुंचने के लिए आपको सिर्फ परीक्षा पास नहीं करनी होती थी,
तो
आपको एक अच्छा कवि या लेखक भी होना पड़ता था।
क्या बात है, मतलब जो अफसर थे वही कलाकार भी थे।
जी हाँ, जो लोग देश चला रहे थे वही देश के सबसे बड़े कलाकार भी थे। सत्ता और कला का ऐसा संगम, ये वाकई दुर्लभ है।
ये तो सच में दिलचस्प है। इसका साहित्य पर क्या असर पड़ा फिर?
असर ये हुआ कि कविता समाज के बिल्कुल केंद्र में आ गई। नाई दो बड़े कवियों का जिक्र करती हैं, ली बाए और डू फू।
हाँ, इनके नाम तो सुने।
ली बाए थोड़े मस्त मौला किस्म के थे, दाओवादी विचारों से प्रभावित, आजादी, प्रकृति, शराब, इन पर लिखते थे।
अच्छा।
वहीं डू फू को कवि इतिहासकार कहा जाता है। उनकी कविताओं में देश का दर्द, युद्ध की पीड़ा, समाज की चिंताएं साफ झलकती हैं। वो कन्फ्यूशियस वाली नैतिक जिम्मेदारी को ज्यादा महसूस करते थे। अधिकारी बेचारे अक्सर इसी कश्मकश में रहते थे कि सरकारी जिम्मेदारी निभाएं या अपनी कला को जिएं। कविता इस दौर में व्यक्तिगत भावनाओं और सामाजिक टिप्पणी दोनों का जरिया बनी। उसकी भूमिका बहुत बहुआयामी हो गई और उसे बहुत ऊंचा दर्जा मिला समाज में।
ठीक है, अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, नई दुनिया, स्थानीय भाषा कथा और नाटक का उदय। ये युआन, मिंग और किंग राजवंशों का दौर है, लगभग 13वीं से 19वीं सदी तक।
जी, इस दौर में चीजें थोड़ी बदली। शास्त्रीय कविता तो चली रही थी, पर साथ ही आम बोलचाल की भाषा में, जिसे बाई हुआ कहते हैं, उसमें कहानियां और नाटक लिखे जाने लगे।
आम बोलचाल की भाषा में?
हाँ, और शहरों में लोग इन्हें खूब पसंद करने लगे। एक नया पाठक वर्ग या कहें दर्शक वर्ग तैयार हुआ।
तो ये एक तरह से साहित्य का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ, आम लोगों तक पहुंचा।
हाँ, कह सकते हैं। अब साहित्य सिर्फ पढ़े लिखे विद्वानों के स्टडी रूम तक सीमित नहीं रहा, वो चायखानों और बाजारों तक पहुंच गया। तो उसकी भूमिका अब सिर्फ ज्ञान देना या नैतिक पाठ पढ़ाना नहीं रही, अब मनोरंजन करना, आम जिंदगी को दिखाना ये भी उसका हिस्सा बन गया।
और इसी दौर में वो बड़े बड़े मशहूर चीनी उपन्यास लिखे गए।
जी हाँ, चार महान क्लासिकल उपन्यास इसी दौर के माने जाते हैं, जैसे जर्नी टू द वेस्ट, वो बंदर राजा वाली कहानी।
हाँ हाँ, मंकी किंग।
हाँ, जो बौद्ध धर्म और लोक कथाओं का गजब का मिश्रण है। या फिर ड्रीम ऑफ द रेड चेम्बर,
इसके बारे में भी सुना है।
ये एक बड़े अमीर खानदान के उतार चढ़ाव की कहानी है और इसमें किरदारों के मन की गहराइयों को, उनकी साइकोलॉजी को बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है।
अच्छा,
इन उपन्यासों ने चीनी समाज की वो तस्वीरें दिखाई, वो व्यापकता दिखाई जो शायद पहले की कविता नहीं दिखा पाई थी। तो साहित्य का दायरा भी फैला और उसकी भूमिका भी।
ठीक है, अब चलते हैं आधुनिक दौर की तरफ। चौथा पड़ाव, संकट और क्रांति। ये 19वीं सदी के अंत से 20वीं सदी के मध्य तक का समय, ये तो बहुत उथल पुथल वाला था चीन के लिए।
हाँ, बहुत ज्यादा। चीन अंदरूनी समस्याओं से जूझ रहा था, पश्चिमी ताकतों का दबाव था, पूरा देश एक संकट के दौर से गुजर रहा था।
तो ऐसे में साहित्य का क्या हुआ?
ऐसे में साहित्य की भूमिका अचानक बहुत ज्यादा बदल गई। अब वो सिर्फ कला या मनोरंजन की चीज नहीं रहा, वो बन गया चीन के भविष्य पर बहस का मुख्य मैदान।
मैदान?
हाँ, लेखक अब सिर्फ लिखने वाले नहीं रहे, वो समाज सुधारक बन गए, क्रांतिकारी बन गए। उनका लक्ष्य हो गया राष्ट्र को बचाना, साहित्य एक मिशन बन गया।
इसमें वो मई फोर्थ मूवमेंट का जिक्र आता है, 1919 का।
हाँ,
वो क्या था?
वो एक बहुत बड़ा बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन था। उसने पुरानी कन्फ्यूशियस परंपराओं पर जोरदार सवाल उठाए।
अच्छा।
और कहा कि हमें आम बोलचाल की भाषा में नया साहित्य लिखना होगा, ऐसा साहित्य जो चीन को जगाए, उसे आधुनिक बनाए। विज्ञान, लोकतंत्र, व्यक्तिवाद, इन नए विचारों को साहित्य के जरिए लाने की बात हुई। साहित्य का लक्ष्य ही बदल गया।
और लूशुन?
लूशुन,
उनका नाम इसी दौर से जुड़ा है।
हाँ, लूशुन को तो आधुनिक चीनी साहित्य का पितामह माना जाता है। उनकी कहानियां जैसे एक पागल की डायरी, अ मैडमैन्स डायरी, या आहक्यू की सच्ची कहानी, द ट्रू स्टोरी ऑफ आहक्यू।
हाँ, ये नाम सुने?
ये उस समय के सर चुके मृत प्राय समाज पर बहुत तीखा व्यंग्य थी। उन्होंने दिखाया कि कैसे पुरानी सोच ने चीन को खोखला कर दिया है।
सर, तो लेखक की भूमिका एकदम बदल गई।
बिल्कुल, वो परंपरा का रखवाला नहीं रहा, बल्कि उसका सबसे बड़ा आलोचक बन गया। साहित्य का लक्ष्य अब सुंदरता या मनोरंजन नहीं था, बल्कि सच्चाई दिखाना और बदलाव लाना था।
इसके बाद आता है पांचवा पड़ाव, चेयरमैन माओ की कलम। माओ के दौर में साहित्य और सांस्कृतिक क्रांति। ये दौर तो 1949 से 1976 शायद सबसे मुश्किल रहा होगा लेखकों के लिए।
हाँ, बेशक। ये चीनी साहित्य के इतिहास के सबसे ज्यादा बंदिशों वाले दौर में से एक माना जाता है। यहाँ राज्य ने, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ने, पूरी तरह तय कर दिया कि साहित्य की भूमिका क्या होगी और उसका लक्ष्य क्या होगा।
और वो क्या था?
लक्ष्य था पार्टी और क्रांति का प्रचार करना। कला को पूरी तरह राजनीति के अधीन कर दिया गया। साहित्य एक हथियार बन गया प्रोपेगेंडा का।
वो समाजवादी यथार्थवाद की बात है इसमें।
जी, इसका मतलब था ऐसी कला जो सिर्फ मजदूरों, किसानों और सैनिकों की वीर गाथाएं गाए, पार्टी की नीतियों का गुणगान करे, हर चीज को सकारात्मक दिखाए, भले ही सच्चाई कुछ और हो।
और ये लाइन किसने तय की?
माओ ज़ेडुंग ने। उन्होंने 1942 में ही यानान में भाषण देकर ये दिशा तय कर दी थी।
तो जो लेखक इस लाइन पर नहीं चले, उनका क्या हुआ?
उनका हाल बहुत बुरा हुआ। उन्हें बहुत सताया गया, जेल में डाला गया, कई तो गायब कर दिए गए। खासकर वो जो सांस्कृतिक क्रांति 1966-1976 का दौर था।
हाँ, वो तो भयानक था।
उस दौरान तो रचनात्मक अभिव्यक्ति का जैसे गला ही घोंट दिया गया था। साहित्य की भूमिका सिर्फ पार्टी का भोंपू बनना रह गई थी।
लेकिन क्या दमन सच में कला को पूरी तरह खत्म कर सकता है? निराइट इस बारे में क्या कहती हैं?
यही तो सबसे दिलचस्प बात है। निराइट कहती हैं कि दमन ने साहित्य को मारा नहीं, बल्कि उसे और ज्यादा चालाक, और ज्यादा कह सकते हैं क्रिएटिव बना दिया।
अच्छा, कैसे?
जब आप खुलकर नहीं लिख सकते तो आप इशारों में लिखते हैं, आप रूपक गढ़ते हैं, इतिहास का सहारा लेते हैं। सेंसरशिप ने एक ऐसा साहित्य पैदा किया जहां जो नहीं कहा गया वो ज्यादा मायने रखता था, छुपी हुई बातें।
शब्दों के बीच की छुपी।
बिल्कुल। और माओ के बाद जब थोड़ी ढील मिली तो स्कार लिटरेचर, यानी जख्मों का साहित्य सामने आया, जिसने उस दौर की भयानक पीड़ा को बयान किया। तो एक तरह से दमन ने अभिव्यक्ति के नए, भले ही छिपे हुए, रास्ते भी खोल दिए।
और अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर, आवाजों की दुनिया। आज के वैश्विक चीन में समकालीन साहित्य, माओ की मौत के बाद क्या हुआ?
उसके बाद जैसे रचनात्मकता का एक बांध सा टूट गया, सुधार और खुलेपन का जो दौर शुरू हुआ उसमें लेखकों को थोड़ी आजादी मिली। और आज का जो चीनी साहित्य है वो बहुत विविध है, अलग अलग शैलियां हैं, अलग अलग आवाजें, अलग अलग चिंताएं। लेखक आज के तेजी से बदलते चीन और दुनिया से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
कुछ उदाहरण देंगे?
जैसे मिस्टी पोएट्स उभरे जिन्होंने सालों बाद खुलकर व्यक्तिगत भावनाओं पर लिखा। फिर 80 और 90 के दशक में बहुत प्रयोगात्मक लेखन हुआ, जड़ें तलाशने वाला साहित्य आया।
रूट सीकिंग?
हाँ, मतलब अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति की तलाश। इसमें नोबेल पुरस्कार विजेता मोयान जैसे लेखक शामिल हैं। वो अपने गांव की कहानियों को एक तरह के मतिभ्रम यथार्थवाद, हेलुसिनेटरी रियलिज्म के अंदाज में लिखते हैं।
अच्छा।
फिर नोबेल विजेता गाओ शिंगजियान जैसे लेखक हैं जो देश से बाहर रहकर आजादी और स्मृति जैसे विषयों पर लिखते हैं। इंटरनेट साहित्य का जबरदस्त उभार हुआ है, अल्पसंख्यक समुदायों का साहित्य है, महिला लेखकों की दमदार आवाजें हैं, आज बहुत कुछ है।
लेकिन क्या वो पुरानी कश्मकश कला की आजादी और सरकारी नियंत्रण वाली, वो अब खत्म हो गई है?
नहीं, खत्म तो नहीं हुई है, वो लुका छिपी का खेल तो आज भी जारी है। सेंसरशिप अब भी एक हकीकत है। लेकिन नाइट का निष्कर्ष ये है कि चीनी साहित्य आज पहले से कहीं ज्यादा जिंदा है, विविध है और दुनिया से जुड़ा हुआ है। उसकी भूमिका अब सिर्फ चीन तक सीमित नहीं रही, वो वैश्विक मंच पर अपनी जगह बना रहा है, भले ही उसे अपनी आजादी के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है।
तो उस पूरी बातचीत से कुछ बड़े मुद्दे या थीम उभर के सामने आते हैं ना?
हाँ।
शायद सबसे बड़ा मुद्दा वो लेखक के ऊपर जो दोहरा बोझ रहा है।
हाँ।
एक तरफ समाज का विवेक बनने की उम्मीद।
हाँ, नैतिक प्रहरी बनने की।
और दूसरी तरफ राज्य की सेवा करने का दबाव।
हाँ।
ये एक कन्फ्यूशियस सोच थी कि लेखक नैतिक हो, राजा को सही सलाह दे।
हाँ, लेकिन यही सलाह जब आलोचना बन जाती थी तो लेखक मुश्किल में पड़ जाता था बेचारा।
बिल्कुल, कुयुआन जैसे प्राचीन कवि से लेकर डूफू और आधुनिक दौर में और लूशुन तक ये तनाव साफ दिखता है। लेखक की भूमिका हमेशा तलवार की धार पर चलने जैसी रही है।
सही कहा, और ये बात कुछ हद तक हम भारत में भी महसूस करते हैं ना, जहां बुद्धिजीवियों या कलाकारों से समाज के प्रति एक खास भूमिका निभाने की उम्मीद की जाती है और उस पर अक्सर बहस भी होती है।
बिल्कुल। दूसरा बड़ा मुद्दा वो वैन, साहित्यिक सुंदरता और दाव, नैतिक मार्ग वाली बहस। मतलब साहित्य का असली लक्ष्य क्या है, कलात्मक खूबसूरती या फिर नैतिक सामाजिक उद्देश्य?
हाँ, ये चीनी साहित्य में हमेशा से एक केंद्रीय बहस रही है। कभी ली बाय जैसे कवि कला को ही सब कुछ मानते हैं, तो कभी माओ के दौर में कला को पूरी तरह राजनीतिक मकसद का गुलाम बना दिया जाता है। ये कला कला के लिए बनाम कला समाज के लिए वाली बहस, ये तो खैर दुनिया भर में चलती है।
सही कहा। और एक और अहम बात जो सामने आई वो है परंपरा से रिश्ता। चीन ने खासकर आधुनिक दौर में अपनी पुरानी परंपराओं पर बहुत सवाल उठाए, उन्हें खारिज भी किया।
हाँ बिल्कुल, माई फोर्थ मूवमेंट में यही हुआ।
लेकिन नाये दिखाती हैं कि ये रिश्ता इतना सीधा नहीं है, बड़ा जटिल है। जैसे लूशुन ने कन्फ्यूशियस सोच पर जोरदार हमला किया, पर कहीं ना कहीं वो उसी परंपरा के नैतिक औजारों का इस्तेमाल भी कर रहे थे अपनी आलोचना में।
ये दिलचस्प है।
तो अतीत कभी पूरी तरह मरता नहीं है, वो हमेशा बातचीत में शामिल रहता है। ये तय करना कि परंपरा की भूमिका क्या हो, ये भी एक लगातार चलने वाला संघर्ष है।
बिल्कुल। और फिर व्यक्ति बनाम समूह का तनाव।
हाँ, ये भी बहुत अहम है।
चीनी संस्कृति में पारंपरिक रूप से समूह, परिवार, समाज, राष्ट्र को व्यक्ति से ऊपर रखा गया है। कन्फ्यूशियस
हाँ।
सोच इसी पर जोर देती है।
लेकिन साहित्य
ने हमेशा व्यक्ति की भावनाओं, उसके अकेलेपन, उसकी निजी दुनिया के लिए जगह बनाई है। ली किंग्स हाउ जैसी कवयित्री की कविता हो या ड्रीम ऑफ द रेड चैम्बर जैसा उपन्यास, ये व्यक्ति की आवाज को सामने लाते हैं।
हाँ।
आज के दौर में ये संघर्ष और भी ज्यादा है, और ये भी हमें भारत में बहुत जाना पहचाना लगता है, जहाँ अक्सर व्यक्ति की इच्छाएं परिवार या समाज की उम्मीदों से टकराती हैं।
सही बात है।
और एक आखिरी बात जिस पर नाइट बहुत जोर देती हैं, वो है बाधाओं के बीच रचनात्मकता।
हाँ, वो दमन वाली बात।
हाँ, ये बहुत कमाल की चीज है कि कैसे राजनीतिक दबाव और सेंसरशिप ने चीनी लेखकों को ज्यादा होशियार, ज्यादा सूक्ष्म, ज्यादा क्रिएटिव बना दिया। जब सीधे सीधे नहीं कह सकते तो इशारों में कहो, कहानी में छुपाकर कहो, इतिहास का पर्दा डालकर कहो, रूपक, व्यंग, विडंबना, ये सब सिर्फ साहित्यिक तकनीकें नहीं रहीं, बल्कि जिंदा रहने और अपनी बात कहने के हथियार बन गईं।
तो कभी कभी लगता है कि बंदिशें ही कला को नए पंख दे रहती हैं।
हाँ, कुछ हद तक तो ऐसा हुआ है। ये एक अजीब विरोधाभास है।
अच्छा, नाइट की किताब से कुछ पंक्तियां भी बहुत यादगार हैं जिनका जिक्र किया गया था। जैसे एक जगह वो कहती हैं,
हाँ, वो वेन और दाओ वाली।
हाँ, शुरुआत से ही चीनी साहित्य का दोहरा उद्देश्य था, सौंदर्य अभिव्यक्ति वेन के लिए एक सुंदर पात्र बनना और जीने के सही तरीके दाओ के लिए एक नैतिक वाहन बनना। इसके विकास का इतिहास इन दो ध्रुवों के बीच तनाव और तालमेल का इतिहास है।
ये पूरी बहस को कितनी खूबसूरती से समेट देती है।
हाँ, बिल्कुल। और एक और जगह वो आधुनिक लेखकों के बारे में कहती हैं, वे केवल एक लंबी परंपरा के बाद नहीं लिखते हैं, वे इसके साथ या इसके खिलाफ लिखते हैं। मतलब अतीत हमेशा उनके साथ रहता है।
हाँ, चाहे वो उसे माने या उसे लड़े। और दमन के बारे में वो लिखती हैं, राज्य नियंत्रण हमेशा साहित्य को मारने में सफल नहीं हुआ, कुछ मामलों में इसने इसे और अधिक चालाक बनने पर मजबूर किया। जहां सबसे शक्तिशाली बयान अक्सर शब्दों के बीच की चुप्पी में दिए जाते थे।
वाह, ये पंक्तियां वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं।
जरूर।
तो ये सब जानने का हमारे रोजमर्रा के जीवन में क्या फायदा है? मतलब हम इस ज्ञान का क्या करें?
देखिए, पहली बात तो ये कि आज के चीन को समझने के लिए सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था या राजनीति जानना काफी नहीं है। उसका साहित्य हमें उसकी संस्कृति की गहरी समझ देता है, उन मूल्यों और तनावों को दिखाता है जो शायद खबरों में नजर नहीं आते। ये हमें, आप कह सकते हैं, हेडलाइंस के पीछे झांकने में मदद करता है।
और शायद चीनी फिल्में या कला वगैरह देखते हुए भी ये समझ काम आ सकती है।
बिल्कुल। जब हम जानते हैं कि वहाँ रूपक या इशारों में बात कहने की एक लंबी परंपरा रही है, तो हम शायद उन फिल्मों या कलाकृतियों की छुपी हुई परतों को बेहतर समझ पाएंगे।
अच्छा।
हम पहचान पाएंगे कि कलाकार क्या कहने की कोशिश कर रहा है, भले ही वो सीधे सीधे न कह रहा हो। जैसे झांग यमो की फिल्में हैं, वो अक्सर ऐतिहासिक कहानियों के जरिए आज के समाज पर टिप्पणी करती हैं।
हाँ, ये तो है। और ये किताब शायद आगे पढ़ने के लिए एक अच्छा शुरुआती बिंदु भी बन सकती है, किसी को और जानना हो तो।
हाँ, निश्चित रूप से। ये इतने सारे लेखकों और किताबों का जिक्र करती है कि अगर किसी की दिलचस्पी जगे तो उसे पता होता है कि कहाँ से शुरू करना है। और शायद सबसे बड़ी बात, ये हमें याद दिलाती है कि संस्कृति चाहे कितनी भी अलग क्यों ना हो, इंसान की जो बुनियादी चिंताएं हैं, कर्तव्य, आजादी, प्यार, नुकसान, न्याय, वो हर जगह एक जैसी होती हैं।
सही का।
चीनी साहित्य पढ़कर हम सिर्फ चीन को नहीं बल्कि शायद इंसान होने के मतलब को ही थोड़ा बेहतर समझ सकते हैं।
तो इस पूरी चर्चा से आपके लिए सबसे बड़ी सीख या सबसे हैरान करने वाली बात क्या रही?
मेरे लिए सबसे हैरान करने वाली बात शायद यही है कि कैसे लगातार दबाव और भयानक बंदिशों के बावजूद ये साहित्यिक परंपरा न सिर्फ जिंदा रही बल्कि फलती फूलती रही, और उसने दुनिया को कुछ बेहतरीन रचनाएं दी। ये इंसानी जज्बे की, रचनात्मकता की एक जबरदस्त मिसाल है। और वो लेखक का दोहरा बोझ, समाज और सत्ता के बीच लगातार पिसना, ये बात मुझे बहुत छू गई।
मेरे लिए सबसे अहम बात शायद ये समझ है कि साहित्य सिर्फ कहानी कविता नहीं होता, वो किसी समाज की धड़कन होता है, जहां उसके सपने, उसके डर, उसकी उम्मीदें, उसकी नैतिक कश्मकश, सब कुछ दर्ज होता है।
हाँ।
चीनी साहित्य इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे कला और जीवन, कला और राजनीति एक दूसरे में गुथे हुए हैं, और ये कि कैसे साहित्य की भूमिका और लक्ष्य को लेकर ये बहस, ये शायद कभी खत्म नहीं होगी।
बिल्कुल। और यही हमें आज के आखिरी सवाल पर लाता है ना? सोचने वाली बात यह है कि आज की इस तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया में, जहां जानकारी का सैलाब है और नियंत्रण के नए तरीके भी हैं, वहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नियंत्रण के बीच का ये सदियों पुराना तनाव चीनी साहित्य को और शायद दुनिया भर के साहित्य को कैसे आकार देना जारी रखेगा?
ये वाकई एक बड़ा सवाल है।
क्या इंटरनेट लेखकों को नई आजादी देगा या फिर नई तरह की चुनौतियां पेश करेगा, ये देखना होगा।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।